Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
Namaskar Shrotao, Market Mantra mein aapka abhinandan. Aaj ke ank mein desh videsh ki aarthik gatividhiyon ke saath saath arthvyavastha aur share bazaar ki halchal par bhi ek nazar dalenge, saath hi charcha bhi karenge. Charcha ke liye aaj hamare samaksh hamare saath स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका करजोर अभिनंदन.
जी शुक्रिया, थैंक यू.
चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
थैंक यू प्राची. इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स ड्रॉप्स 135 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स ऑन अ फ्लैट नोट. मेजर एशियन इंडिसीज एंड मिक्स्ड एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज.
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 135 अंकों की गिरावट, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सपाट बंद हुआ. प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में रहा मिला जुला रुख और वैश्विक कच्चे तेल के दाम बढ़े.
And a quick reminder before we begin the program, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
श्रोताओं, अब आइए जानते हैं कि आज पूरे दिन के दौरान हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने, यानी कि हमारे शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया. आज उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद घरेलू शेयर बाजार नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 135 अंक गिरकर 75,183 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी मामूली रूप से 4 अंक लुढ़ककर 23,655 पर स्थिर हुआ. व्यापक शेयर बाजार में भी मिला जुला रुख देखने को मिला श्रोताओं. मिड कैप 100 नकारात्मक रुझान के साथ सपाट बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप 100 में 0.6% की बढ़त दर्ज की गई. इससे पहले सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच बाजार में तेजी देखी गई. हालांकि ये तेजी अल्पकालिक थी, क्योंकि दोपहर के सत्र में दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसीज एंडेड ऑन अ नेगेटिव नोट आफ्टर अ चॉपी ट्रेड टुडे. The Sensex declined 135 points to close at 75,183, while the Nifty dipped marginally by only 4 points to settle at 23,655. The broader market on the National Stock Exchange ended mixed. The mid-cap 100 ended flat with negative bias, while the small-cap 100 rose by 0.6%. Earlier, the markets opened higher amid positive global cues. However, the momentum proved short-lived as both indices gave up their initial gains during the afternoon session.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस 1.7%, टेक महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलिवर में लगभग 1.5% की गिरावट आई. वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों में इंडिगो लगभग 3.2%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1.8% और ट्रेंड के शेयरों में 1.7% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई.
In the sectoral indices at the BSE, 16 out of 25 sectors ended in positive territory. In the top gainers, services rose 1.6%, capital goods climbed 1.3%, and industrials as well as realty added 1.1%. Among the top losers, IT as well as focused IT fell over 0.5%. Mid-small private banks index lost almost 0.5%, and FMCG dropped by 0.4%. The overall market breadth was at the BSE was positive, as shares of 2,426 companies advanced, shares of 1,745 companies declined, and shares of 191 companies remained unchanged.
और श्रोताओं, अब जान लेते हैं हम रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 63 पैसे मजबूत होकर ₹96.20 पर बंद हुआ. डॉलर सूचकांक, जो अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वो दिन के कारोबार में 99.22 पर कारोबार कर रहा था. डॉक्टर शर्मा, पिछले 3 सत्रों से हम दोनों ही प्रमुख सूचकांकों को जब ट्रैक करते हैं तो देख पाते हैं आंकड़ों के हिसाब से कि हमने देखा ट्यूजडे को, यानी मंगलवार को, 114 अंक की गिरावट हमने देखा वेंसडे को 118 अंक का उछाल, फिर हम देख रहे हैं आज थर्सडे को 135 अंक की गिरावट। ये आसपास के ये क्या संकेत देते हैं हमें?
देखिए राजी, काफी वॉलेटाइल मार्केट है
जी,
और बहुत अनसर्टेनिटी अभी भी है, जो हम पीछे काफी महीनों से डिस्कस करते आ रहे हैं कि कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। तो अभी भी जो अनसर्टेनिटी है कि युद्ध होगा वापस या नहीं होगा, शांति हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, या इतने घंटे का अल्टीमेटम है, तो ऐसी न्यूज जो है वो बार बार मार्केट्स के सेंटिमेंट को इंपैक्ट कर रही है। और दूसरा जो क्योंकि कॉमोडिटी मार्केट, खास करके जो क्रूड मार्केट है, वो ऐसी न्यूज से बहुत ही सेंसिटिव है, तो उसमें बहुत उछाल आता, कई बार उछाल आता है, कई बार गिरावट आ जाती है। अभी जैसे कल ट्रंप साहब ने बोला कि भाई ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो प्राइस करेक्शन हुई कि क्रूड के प्राइसेस भी बहुत अच्छे से करेक्ट होंगे, तो उसी टाइम उनमें करेक्शन आई। तो फिर बोले कि भाई अभी युद्ध हो सकता है 48 आवर्स में, मैं संडे तक का अल्टीमेटम देता हूं, तो उसके बाद पहले मार्केट्स हमारे ठीक ठाक थे, तो सेंटिमेंट अच्छा था। मैं देख रहा था कि जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो भी लगभग कोई 150 अंक के उछाल से चल रहा था कल शाम को, लेकिन आज हमने गिरावट देखी। तो ये दिस इज ऑल न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी, अभी कुछ हुआ नहीं है
जी।
अभी रिसेंटली युद्ध विराम तो अभी चला ही हुआ है, लेकिन जो ऐसी न्यूज है वो सेंटिमेंट को वॉलेटाइल कर रही है, जिससे कि प्रभाव आना लाजमी है। मार्केट्स तो बहुत सेंसिटिव होती है ऐसी न्यूज, और इन्वेस्टर खास करके, क्योंकि इन्वेस्टर ही तो मार्केट को बनाता है। जब इन्वेस्टर अनसर्टेन होगा तो मार्केट्स वैसा ही बिहेव करेगी। तो मैं समझता हूं कि कुल मिला के जो स्थिति है वो अनसर्टेनिटी की वजह से है। अदरवाइज अगर आप ये देखेंगे, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो हमारी मार्केट बहुत ही तेज गति से रिबाउंड करती है। मेरे ख्याल से वो उछाल होता है जो कई कई महीनों के स्तर को तोड़ देता है। कई बार मार्केट में पोटेंशियल वहां से पता चलता है हमें कि हमारी मार्केट बहुत पॉजिटिव है, बट बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ वॉलेटाइल न्यूज वो इंपैक्टेड है, कंफ्यूज्ड है, अनसर्टेन है।
तो डॉक्टर शर्मा, यू नो, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस वॉलेटिलिटी, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस अनसर्टेनिटी, फॉर दोज पीपल हु आर न्यू टू द स्टॉक मार्केट एंड हु मे वॉन्ट टू एंटर द मार्केट, यू नो, वॉट वुड यू से? Should they enter at this point? Because, like you said, there's a lot of volatility, there's a lot of uncertainty. Even the experienced investors and, you know, people who are experienced, they may not be, you know, so very sure of where things are going. But for somebody who wants to enter the market at this point, what would you say for them?
Yes, I suggest some gradual entry on the basis of some SIP, because you can't time the market.
Right.
You have to, if you want to invest, then you should enter in the market with some investment, not at a single go, but in steps.
Right.
And SIP is the best measure to enter in the market, to capture the volatility also, and to take the market opportunity emerging from such kind of volatility. Sometimes stocks are significantly low, so that is the right point to enter in that particular stock. So I believe there should not be any single knee-jerk entry that then the market is now decelerating, I should enter with full amount of money. So there must be some homework with some expert's advice, right. Then they can enter in the market, but that too gradually with the SIP.
Right. जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई हमारे श्रोताओं के लिए। मगर डॉक्टर शर्मा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी FII की निकासी पर। मैं जब ट्रैक कर रही थी डेटा को, जब मैंने आंकड़ों को देखा, तो कल तक की जो निकासी हुई है इस कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से, वो तकरीबन 218,273 के आंकड़े आए हैं सामने। तो ये किस तरीके से भारतीय बाजार के सेंटिमेंट को, क्योंकि कई सारे श्रोताओं ने कॉलर्स डे पर कॉल करके पूछा है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि निकासी ना हो, क्या कुछ ऐसे, मतलब सबकी अपनी अपनी योजनाएं हैं कि नहीं निकले हमारा पैसा, लेकिन निकासी तो हुई है।
देखिए, पहला नंबर तो प्राची के, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दी FII मनी नाउ, वी आर सेल्फ रिलायंट। हमारी जो मार्केट है वो अपने आप में चलना सीख गई है। हमें, हमारा कोई डिपेंडेंस FII मनी के ऊपर ज्यादा नहीं रहा है।
अच्छा।
और वो मनी बहुत ही स्पेकुलेटिव होती है। वो अभी आपको अभी निकासी में आपने देखा, आप 10 दिन के बाद अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, क्योंकि वो देखते हैं कि मार्केट में पोटेंशियल तो है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो वो वापिस आपको इससे भी ज्यादा तेज गति से एंटर करते दिखाई देंगे। लेकिन उनको ऐसे कुछ मायने चाहिए होते हैं, एक कोई बहाना चाहिए होता है, मैं ये कहूंगा, जहां से वो प्रॉफिट बुक करके अपना निकलने का प्रयास करें।
हाँ बिल्कुल, पिछले अगर मैं 3 दिन की बात करूं तो 3 दिन में DIIs ने केवल खरीदारी की है और एक तरीके से कुशन किया है।
जी वही तो, DII जो है उन्होंने हमारी मार्केट को बहुत तकड़ी सपोर्ट दी है, और रिटेलर ने जो अब हमारा रिटेलर पार्टिसिपेशन है वो FII के जो फ्लो है उनसे कहीं तेज गति रखता है, उसका मार्केट को उनसे भी ज्यादा सपोर्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नाउ वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द FII मनी, वी आर सपोर्टेड बाय अवर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स DIIs एंड अवर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो उनका तो अभी कुछ खास पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कितना, ये 2,17,18,000 crore इज नथिंग इन द सच अ ह्यूज मार्केट कैप। तो मैं ये कहूंगा कि उसको देख के हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, वी आर, बस हमें ये जानना चाहिए कि वी आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज, एंड अवर फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर्ड विद एनी एडवांस्ड इकोनॉमी और इमर्जिंग इकोनॉमी।
So, Dr. Sharma, I just want to step out of the stock market for just, you know, for my next question. For those of our listeners who are maybe probably, you know, are risk averse or who may not have the inclination to enter, to invest through a speculative medium or speculative way, what are the ways in this present scenario, what are the different options for them, you know, for investment so that they can invest and still, you know, make some money and benefit?
I would say there should be some mix of investments, not a single commodity or single segment like the stock market or the commodity market or the debt market or bond market. Kuch aisa, there should not be any single focus. Investment must be diversified in different segments, like some money in the equity market, some money in the commodity market, some in real estate, some in bond market. So this is the time to diversify, actually. You should not be dependent on a single investment, like whole money is going in gold or silver or equity, because all are very, very volatile at this juncture.
इस संदर्भ में, क्योंकि आपने कहा कि एक विस्तृतीकरण हमें करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का, हमें डाइवर्सिफाई उसे करना चाहिए, तो मैं साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि आपके लिहाज से ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं इस समय पर जहां हमें निवेश करना चाहिए।
देखिए, हमारा जो सेक्टर है, जो पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूं कि वी आर अ प्रॉमिसिंग इकोनॉमी, हमारा हर एक सेक्टर ही बहुत ही प्रॉमिसिंग है, लुक्रेटिव है, प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छा इकोनॉमी है। तो फिर भी उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि अगर हम पॉलिसीज को देखें तो हमारा लक्ष्य क्या है, विकसित भारत, देन वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर आपका मार्केट के थ्रू हो, जैसे भी हो, दैट इज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग सेक्टर, नॉट ओनली फॉर द years or the decades, but for a long-term story, many decades, ये तो हमारा development चलेगा, because एक advanced economy, एक developed economy के पास एक बहुत बड़ा infrastructure होता है, और जैसे हमने पिछले 10 साल में infrastructure development देखी है, उसको देख के हमें लगता है कि this story will never end.
Yes, I was about to say that same, Dr. Sharma, that if you look at the budgets in the last couple of years, the government's focus has been, you know, the allocation towards infrastructure has been the maximum, and you know, the government is focusing, going full-fledged in that direction. So like you said, that's a very promising sector.
Yes, now I would say every road goes to Viksit Bharat. So your capital expenditure increased from 2-3 lakh crore to now 11 lakh crore.
Yes.
So that is a significant increase during the last few years. So this trajectory will go up and up. There is no full stop to this infrastructure development.
Right. श्रोताओं, भारत को विकसित भारत बनाने के सपने को दिल में लिए अब आइए चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। आज एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में मिलाजुला रुझान रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 8.4% से अधिक बढ़ा, जापान का निकेई 3.1% बढ़ा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक सकारात्मक रुझान के साथ स्थिर रहा। वहीं बात अगर चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स की करें तो 2% और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 1% गिरा। आर्थिक मोर्चे पर जापान का निर्यात लगातार आठवें महीने बढ़ा। सेमीकंडक्टर शिपमेंट में उछाल के कारण अप्रैल में कुल निर्यात में 14.8% की वृद्धि हुई, जो जनवरी के बाद सबसे तेज वृद्धि दर है। बात अगर यूरोपीय सूचकांकों की करें श्रोताओं, तो आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं ये तमाम सूचकांक। जर्मनी का डैक्स 0.8%, फ्रांस का कैक लगभग 0.5% और लंदन का फुटसी लगभग 0.4% नीचे कारोबार करता नजर आया अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक।
Let's move on to the US markets. US equities ended higher yesterday as crude oil prices and US Treasury yields declined. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index surged more than 1.5%, the Dow Jones Industrial Average climbed 1.3%, and the S&P 500 soared 1.1%. Meanwhile, investors assessed the first quarter results of a major artificial intelligence chip maker and its growth forecast for the second quarter. On the policy front, minutes from the latest Federal Reserve meeting showed that most officials expected further interest rate hikes if the West Asia conflict continued to fuel inflation. Dr. Sharma, we are of course talking about the Federal Reserve meeting minutes, but I want to, you know, come back to our own central bank, the Reserve Bank of India. The next round of MPC meet is just, you know, more or less, you know, in about 10 days. It's going to be on June 5th. What are your expectations at this point of time because of the way the whole geopolitical situation is? Crude oil prices are rising. That's obviously going to put some pressure on, you know, inflationary pressures are also there. So what's your expectation?
Our expectation is status quo, because now time is not permitting to increase or decrease the repo rate, because both these situations are not favorable. We are facing some inflation challenge because WPI is already 8.3%. Yes. And there are chances that CPI will also go up because now the petrol and diesel prices have been increased a little bit.
Yes.
So there will be some impact on the CPI inflation in the coming month. So, but at this juncture, I believe RBI should take some calibrated measures, and status quo is the best way to move forward, to remain strong and resilient in the market.
तेल की आपूर्ति को लेकर के इतनी चिंताएं हैं, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है उसका प्रभाव, उसके बंद होने का प्रभाव तमाम अर्थव्यवस्थाओं पर देखने को मिलता है, लेकिन इस ये बात कितनी अच्छी बात है हमारी अर्थव्यवस्था की और हमारी पॉलिसीज की, कि हमारे देश में जो प्राइस हाइक हुए हैं पेट्रोल और डीजल के, उसमें वो सिंगल डिजिट में हुए हैं, जो बाकी म्यांमार है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, ये यहां पर जो प्राइस हाइक हुए हैं वो डबल डिजिट्स में हुए हैं, तो ये इसे आप किस तरह से देखते हैं?
एंड डॉक्टर शर्मा, बिफोर यू आंसर दैट, यू नो, आई जस्ट वांट टू ऐड टू व्हाट प्राची सेइंग, इट्स नॉट जस्ट कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक म्यांमार और पाकिस्तान, इट्स इवन, यू नो, डेवलप्ड इकोनॉमीज, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी यूएस, वेयर वी हैव सीन पंप प्राइसेस इंक्रीजिंग बाय समथिंग लाइक 44%, मोर देन 44% हाइक इन पेट्रोल प्राइसेस, 48.1% in diesel. If you look at China, 21.7% hike in petrol and 23.7% in diesel. So it's also these, the major economies of the world where the pump prices have shown a very sharp increase vis-a-vis India, where it's just a week ago, after 4 years, that we've seen this increase of approximately 4 rupees per liter.
I would say this is the best management by the government, because now, our inflation, particularly, I was talking about CPI inflation, that remains at around 3.5%. A small increase from 3.3 to 3.5%, 0.3 percentage point increase from February to April. So this is the best management. So now inflation, WPI trajectory is very high, 8.3%. So we have to percolate or pass on some effect of the such kind of rise in the international crude oil prices to consumers. And the government is very, very wise in this segment, because they don't want to increase the prices, but they have increased a little bit so that the whole burden is not borne by the oil marketing companies. तो मैं इसको कहूंगा कि बहुत, जैसे प्राची आपने क्वेश्चन किया, तो एक बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है कि सरकार अभी भी नहीं करना चाहती थी शायद, फिर भी जब देखा कि WPI इन्फ्लेशन जो हमारा होलसेल इंपैक्ट है बहुत ज्यादा है, तो हमें कुछ ना कुछ पास ऑन करना चाहिए, तो उसी के मद्देनजर ये सिंगल डिजिट, और सिंगल का भी आधा जैसे हम
बिल्कुल
उसी का हुआ है, वो भी डबल से बहुत दूर है। तो मैं ही कहूंगा कि आने वाले टाइम में शायद आगे ऐसे ही हमारा रवैया रहेगा हमारी सरकार का कि जो बर्डन है कंज्यूमर तक ज्यादा ना जाए, मजबूरन जो देना पड़ा वो उनको करना पड़ा। लेकिन अगर कुछ अब शांति हो जाती है, जैसे ट्रंप साहब कह रहे हैं कि क्रूड प्राइसेस विल करेक्ट सिग्निफिकेंटली, कल ही स्टेटमेंट दिया कि प्राइसेस बहुत नीचे आ जाएंगे, तो हमें शायद आगे जरूरत ही ना पड़े। अगर अगर ऐसा हो जाता है, उनकी ये बात, ये तथ्य सच हो जाता है, जिसकी बहुत कम उम्मीद है वैसे अभी शॉर्टर पीरियड में, कि ऐसा कुछ होगा कि इतनी जल्दी कुछ शांति हो जाएगी जिस तरीके के हालात चले हुए हैं, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्रूड प्राइसेस में अगर करेक्शन आती है,
इट विल टेक टाइम।
देखो क्रूड प्राइसेस डबल हो चुके
जी,
$55 के एवरेज से अभी हम 110 देख रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर इंपैक्ट कितना हुआ है, आपने बताया कि 4-5 रुपए का,
लगभग
लगभग उसका कोई जो डबल है उसका
5% से कुछ,
आप उसका समझिए, आप उसका समझिए कि 5% इंपैक्ट भी अभी नहीं हमारे ऊपर पास ऑन हुआ है। 95% जो इम्पैक्ट है वो तो सरकार ने आने ही नहीं दी।
तो उसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर शर्मा, आई वांट टू आस्क यू, व्हाट आर द यू नो फैक्टर्स दैट हैव वर्क्ड इन अ फेवर, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट गेव द गवर्नमेंट दिस यू नो लीवे टू कुशन एंड यू नॉट पास ऑन द प्राइसेस ऑन टू द कंस्यूमर, द पंप प्राइसेस दे वर एबल टू होल्ड
Yes.
For such a long time. So what were those factors?
Factors are our resilience of the our oil marketing companies, number one. Yeah. And number two, our best fiscal management.
Right.
We are very good in our fiscal management. Our fiscal deficit is anticipated at around 4.3-4.4%. So that is a great thing. And we are very resilient in managing our public finances.
Right.
And the third thing is the inflation management.
Right.
And fourth is the government's will to support the economy and to support the consumers and to make it more and more resilient and strong in the global marketplace.
Right. Let's move on.
अन्य खबरों में श्रोताओं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का यह दौरा दर्शाता है कि भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। श्री गोयल ने यह भी बताया कि 5 देशों की इस यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है।
बड़ी बड़ी कंपनियों के, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की फॉर्च्यून 500 कंपनियों के जो सीईओज हैं, उनके साथ बातचीत हुई, उनके साथ आगे भारत में निवेश, व्यापार और संबंधों बढ़ाने की चर्चाएं हुई। अगर हम सिर्फ ये जिन सीईओज के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की उन्हीं का अगर वैल्यू देखें तो वो $3 trillion से ज्यादा इनकी वैल्यू बनती है। यानी भारत की GDP के लेवल के सीईओज मिल के सब उनके साथ चर्चाएं हुई है आगे की भारत की विकास यात्रा में जुड़ने के लिए।
डॉक्टर शर्मा, ऐसी कठिन परिस्थिति में भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा, ये लाजमी है कि ये एक स्ट्रेटेजिक एक कदम है, लेकिन ये किस तरीके से भारत को लाभान्वित करेगा, मैं चाहूंगी कि आप उस पर प्रकाश डालें।
देखिए, ये जो 5 कंट्री हैं ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक कंट्री है, मैं ये कहूंगा। जो 5 के 5ों हमारे साथ किसी न किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के उसमें जुड़े हुए हैं, जैसे इंडिया UAE सीपा हमारा है, नीदरलैंड इंडिया में वो इंडिया UFTA के अंडर आता है, स्वीडन भी इंडिया UFTA में है, इटली भी इंडिया UFTA में है, और नॉर्वे जो है, जो हमारा एफ्टा एक एग्रीमेंट है
टेपा,
तो उसमें नॉर्वे आता है। और अगर हम देखें ट्रेड ट्राजेक्ट्री तो लगभग कोई $140 बिलियन का ट्रेड हमारा इन कंट्रीज के साथ होता है,
इन पांचों देशों के साथ।
100 अरब से ज्यादा तो हमारा UAE के साथ ही है
जी।
तो $140 बिलियन का मतलब है कि दिस इज लार्जर देन दी मर्चेंडाइज ट्रेड विद चाइना एंड मर्चेंडाइज ट्रेड विद USA ऑल्सो। तो इम्पोर्टेंस बहुत सुदृढ़ बन जाती है कि हम इनके साथ अपने जो बायलेटरल रिलेशंस हैं उनको और संगठित करें, उनको और मजबूत करें, और इस ट्राजेक्टरी को जो अभी 140 बिलियन डॉलर की है उसको हम आने वाले 5 वर्षों में 350-350 बिलियन डॉलर तक लेके जाए। तो दैट इज द आई बिलीव ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस five countries.
Right. Let's move on to the next story. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal today said that India's GDP upgraded from 6.4 to 6.5% in the middle of global crisis, demonstrating the capability of 1.4 billion Indians. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, the minister said that this achievement reflects the country's growing ability to engage with the world from a position of strength with confidence. Talking about current account deficit, the minister underlined that the government is taking various steps and all government departments are working in coordination to tackle the situation. Mr. Goyal also said that that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high precision defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Dr. Sharma, very quick comment on the fact that the minister, you know, talked about the GDP upgrade in the middle of a global crisis. More than that, the fact that he said that demonstrates the capability of 1.4 billion Indians and the whole world is looking towards India.
Yes, that is true, because now many expectations are that our GDP will be at around 6.5%, and RBI even anticipated at around 6.9% during the last policy, and many other estimates are at around 7%. So the median, I believe, is at around 6.5 to 6.7. So I think that is going to become a reality in the current year also.
Right. Let's move on to the next story. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said that the government aims to make the Indian automobile industry number one in the world. Addressing the American Chamber of Commerce in India's annual leadership summit in New Delhi, the minister added that the government is also working on alternative fuel and biofuel, ethanol, methanol, biodiesel, LNG, electric and hydrogen.
The ministry total size of the automobile industry was at time was 14 lakh crore. Now the size of the automobile industry is 22 lakh crore. And now we have just surpassed Japan and our number is third. The first is USA having the size of 79 lakh crore. Second is China 49 lakh crore. And India is now 22 lakh crore. Our every year growth is 30% to 40%. Now our aim is to make Indian automobile industry number one in the world.
And let's move on to the commodity prices. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading over 2.1% up at $107.26 per barrel, while the West Texas Intermediate crude was trading over 2.7% up at $100.94 per barrel when reports last came in. And let's have a look at the gold and silver prices in the Indian bullion market. 24-carat gold was trading over 0.5% down at 1,59,870 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.3% down at 2,71,020 rupees per kilogram a short while ago.
Multi-commodity exchange mein June anubandh wala sona aadha pratishat girkar 1,59,155 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki July anubandh wali chandi lagbhag 1.5% ludhak kar 2,70,431 rupees prati kilogram par karobar kar rahi thi. Dr. Sharma, सोने के दाम घटे हैं, इस पे आपकी मैं संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी क्योंकि समय की बात है।
थोड़ा सा डॉलर स्ट्रांग हुआ है अभी, जो जिस तरीके के बॉन्ड मार्केट भी स्ट्रांग हुई है, तो उसी वजह से जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो कॉमोडिटी मार्केट के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट आता है, वही वजह है कि गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी शाइन,
यानी कि अब जो निवेशक हैं, जो सोना खरीदना चाहते हैं, उनके लिए आप ग्रीन फ्लैग दे रहे हैं कि अब आप खरीद सकते हैं।
देखिए, मैं अभी भी नहीं कहूंगा क्योंकि गोल्ड प्राइसेस काफी ऊपर है एज कम्पेयर विद, और जो उछाल है पिछले कुछ महीनों में ही है, तो अभी थोड़ा रुक के ही थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए।
डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए, मेरे और अनुभा के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।
थैंक यू।
एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस इन इंडियन स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स ड्रॉप्स 135 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स ऑन फ्लैट नोट, मेजर एशियन इंडिसेस एंड मिक्स्ड, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज, एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। फॉर नाउ फ्रॉम द एंटायर टीम, गुड बाय, नमस्कार।
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।